चैप्टर 38 स भाग 3 संश्लिष्ट योजना। संसार में प्राकृतिक वस्तुएं अपने पूरे परिवेश में सुंदर लगती हैं। काव्य में इनका बिंब उपस्थित करने के लिए उस परिवेश का अंकन भी आवश्यक है। किसी वस्तु का स्वरूप अन्य वस्तुओं से निरपेक्ष नहीं होता, स्थिति के साथ गति का भी एक सापेक्ष स्वरूप होता है। एक की गति दूसरे को प्रभावित करती है। वायु जब चलती है तब जल तरंगे उठती हैं, दोनों की गति का एक सापेक्ष स्वरूप है। जब कवि सूक्ष्म निरीक्षण के बल पर किसी वस्तु की स्थिति और गति का उसके परिवेश की सापेक्षता में पूर्ण चित्र अंकित करता है, या जब वह एक संबंध सूत्र में बंधी हुई वस्तुओं और उनके व्यापारों का पूर्ण बिंब प्रस्तुत करता है, तो उसकी वस्तु व्यापार योजना संश्लिष्ट होती है। उदाहरण, कालिदास ने हिमालय के पवन के साथ भागीरथी के जल कण का फैलना, देवदारू के पेड़ों का कापना, मोर की पूंछों का छितराना, किरातों का मृग की खोज में निकलना और वायु सेवन करना, इतने व्यापारों का परस्पर संबद्ध दिखाया है। पर इतनी अधिक संश्लिष्ट योजना के प्रत्यक्षीकरण के लिए विस्तृत और गूढ़ निरीक्षण अपेक्षित है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 335। उदाहरण द्वितीय, आसपास की और वस्तुओं के बीच परिस्थिति तथा नाना अंगों की संश्लिष्ट योजना के साथ किसी वस्तु का जो वर्णन होगा वही चित्रण कहा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 86। उदाहरण, नवीनता की संभावना तो कवि के निज परीक्षण द्वारा प्रत्यक्ष की हुई वस्तुओं और व्यापारों की संश्लिष्ट योजना में ही हो सकती है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 79। संस्कार, मनुष्य की अंतःसंज्ञा में विद्यमान स्मृति अवशेष वासना, उदाहरण करोड़ों पीढ़ियों को पार करके आने वाली अंतःसंज्ञावर्तिनी वह अव्यक्त स्मृति नहीं रह गई जिसे वासना या संस्कार कहते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 114। संसृष्टि, परस्पर निरपेक्ष अनेक अलंकारों की तिल तंडुल न्याय से एकत्र स्थिति संसृष्टि अलंकार है। मिथो अनपेक्ष में तेषाम स्थिति संसृष्टि उच्यते। साहित्य दर्पण पृष्ठ संख्या 882। कहीं कहीं तो संकर या संसृष्टि के बिना ही रूप कातिशयोक्ति बहुत दुर्बोध हो जाती है। जैसे जो लगी कालीन दी होई विरासी, पुनि सुर सही होई सुमुद परासी। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 112। सजातीय भेद, एक जाति के पदार्थ का उसी जाति के अन्य पदार्थ से जो भेद है वह सजातीय भेद है, जैसे एक गाय का दूसरी गाय से भेद है। उदाहरण, शुद्ध ब्रह्म स्वगत सजातीय और विजातीय तीनों भेद से रहित है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 42। सत्य काव्य, सत्य काव्य वह है जो सामान्य भूमि पर, उस भूमि पर जहाँ व्यक्ति सत्ता का लोक सत्ता में या व्यक्ति की मनःवृत्ति प्रवृत्ति का लोक की मनःप्रवृत्ति में लय हो जाता है, पहुंची हुई अनुभूतियों का वर्णन करता है, वही सत्य काव्य है। उदाहरण, सत्य काव्य और असत्य काव्य में काव्य और काव्य भास में यही भीतरी या मार्मिक अंतर होता है कि सच्चा काव्य सामान्य भूमि पर पहुंची अनुभूतियों का वर्णन करता है और काव्य भास ऐसे सच्चे वर्णनों की केवल नकल करता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 52। सत्व, अस्तित्व, अस्तित्व की वह चेतना जो अन्य पदार्थों से अपनी अभिन्नता का बोध कराती है, उनमें उस सत्व की कमी है जो सत्ता मात्र के साथ एकीकरण की अनुभूति द्वारा लीन करके आत्मसत्ता के विभुत्व का आभास देती है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 11। सत्व गुण, प्रकृति के तीन गुणों सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में से एक है। सत्व का अर्थ है अस्तित्व। सत्व गुण सहजात गुण है, वह शेष गुणों से श्रेष्ठ है, वह शुद्ध स्वभाव बोधक है। उदाहरण, त्रिगुणों में सत्व गुण सबके ऊपर है और यहाँ तक कि उसकी ऊपरी सीमा नित्य पारमार्थिक सत्ता के पास तक व्यक्त और अव्यक्त की संधि तक जा पहुँचती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 70। उदाहरण, पूर्ण प्रभव विष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्वगुण की सत्ता प्रेम दया करुणा सहिष्णुता त्याग आदि आवश्यक मानते हैं, पर दोनों रूपों में दूसरे भावों की तह में अर्थात अंतःसंज्ञा में स्थित अव्यक्त बीज रूप में भी और प्रकाश रूप में भी। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 69। सत्व रस, सत्ता मात्र में प्रभावित रस, संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता के अंतर्भूत हैं, अतः सब में एक ही जीव चेतना का रस प्रवाहित होता है। सत्ता मात्र में प्रवाहित यह जीवन रस ही सत्य रस है। उदाहरण, संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 14। सत्वस्थ राग, शुद्ध तत्व में स्थित राग भावना। उदाहरण, सत्वस्थ राग यदि दृढ़ हो जाएगा तो राजस और तामस दोनों रागों को दूर रखेगा। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 40। सत्वोद्रेक, सत्व मन का यह स्वरूप है कि जिसमें रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श नहीं रहता। सत्व के उद्रेक या प्राबल्य का तात्पर्य है रजोगुण और तमोगुण को अपने कार्यों, चंचलता एवं मोह आदि के संपादन से असमर्थ हो जाना। विभाव आदि रूप का व्यर्थ में सहृदय के लय होने पर ही सत्वोद्रेक होता है। उदाहरण, हमारे यहाँ रस के प्रकरण के आरंभ में ही सच्ची रस की अनुभूति कैसे होती है यह बताते हुए सत्वोद्रेकात कहकर झगड़ा साफ कर दिया गया है। रसानुभूति के समय प्रकृति सत्वस्थ रहती है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव उस समय नहीं रहता। संप्रेम, जहां नायक और नायिका दोनों एक समान प्रेम हो वहां संप्रेम होता है। उदाहरण, रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम में आरंभ में विषमता और गोपी कृष्ण के प्रेम में अंत में। दोनों की विषमता की स्थिति में यही अंतर है कि गोपी कृष्ण प्रेम समता से विषमता की ओर प्रवृत्त हुआ है और रत्नसेन पद्मावती का प्रेम विषमता से समता की ओर। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 54। समरस, शिव और शक्ति के ऊपर तादात्म्य संबंध को सामरस या समरसता कहते हैं। शिव और शक्ति की यह समरसता द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत की अमृतमयी आनंद भूमि की स्थिति है। काश्मीरीय शैव दर्शन में जिस अद्वैत भक्ति का प्रतिपादन किया गया है वह सामरस्य भाव की ही भक्ति है। समरस भाव की स्थिति में द्वैत भी अमृतोपम हो जाता है। जाते समरसांदे दैप्य अमृत मितोपम मित्र यो इव दंपत्यो जीवात्मा परमात्मना। उदाहरण, फिर मनु कैलाश की ओर दिखाकर उस आनंद लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप ताप कुछ भी नहीं, सब समरस है। और अभेद में भेद वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करते कहते हैं, अपने दुख दुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर चिति का विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 690। समाजवाद, व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया रूप प्रकल्पित सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को मिटाकर समता के आधार पर समाज के संगठन में विश्वास करने वाला सिद्धांत समाजवाद है। इस सिद्धांत को मार्क्स के चिंतन से विशेष बल मिला। मार्क्स के अनुसार समाज शोषक और शोषित दो वर्गों में विभक्त है, पूंजीवादी वर्ग शोषक और श्रमिक वर्ग शोषित। इनके बीच के आर्थिक वैषम्य को मिटाने के लिए पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए। इसके लिए वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता है। श्रमिक वर्ग संगठित होकर शोषण विहीन समाज की स्थापना कर सकता है। समाजवादी हर व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लेने और उसके काम के अनुसार उसे पारिश्रमिक देने में विश्वास करता है। उदाहरण, इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 645। समाधि, अष्टांग योग की अंतिम स्थिति। इस स्थिति में साधक की चित्त वृत्ति परम तत्व में पूर्णतः लीन हो जाती है। सम्यक धीयते एकाग्री क्रियते विक्षेपान परिकृत्य मनोयत्र समाधि। भारतीय दर्शन पृष्ठ संख्या 382। उदाहरण, यहाँ राजा की पद्मिनी में ध्यान बेसुध होना कहकर साधक भक्ति की समाधि द्वारा ईश्वर सानिध्य प्राप्ति की व्यंजना की गई है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 59। समाप्त पुनरातत्व, एक प्रकार का वाक्य दोष जो वाक्य के समाप्त हो जाने पर भी पुनः उससे समन्वित होने वाले पद के प्रयोग के कारण वाक्य रचना में लक्षित होता है। उदाहरण, न्यून पदत्व के अतिरिक्त समाप्त पुनरातत्व भी प्रायः मिलता है। जैसे हिये छाह अपना औ सीयू, यदि उपना शब्द आदि में कर दें तो यह दोष दूर हो जाएगा। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 203। समालोचना, कृति विशेष का सम्यक अनुशीलन करने के बाद उसमें सन्निहित विचारों, अंतर्वृत्तियों और सौंदर्य विधायक तत्वों का संतुलित एवं विवेकपूर्ण विश्लेषण समालोचना है। उदाहरण, वहां यूरोप में समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन कराने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष कथन भी आ जाता है, स्थायी साहित्य में स्थान पाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 526। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, वह समीक्षा जो काव्य कृति का मूल्यांकन करते समय उस पर सामाजिक, राजनीतिक एवं सांप्रदायिक परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन करती है, ऐसे ऐतिहासिक आलोचना कहते हैं। इस आलोचना का लक्ष्य रचना विशेष का उसी प्रकार की अन्य रचनाओं की सापेक्षता में स्थान निर्धारित करना होता है। उदाहरण, ऐतिहासिक समीक्षा हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 527। निर्णयात्मक जुडिशियल मेथड, वह आलोचना जो रचना के गुण दोष का आकलन करके उसके मूल्य निर्धारित करती है। उदाहरण, इस पर शायद वह प्रभाववादी समीक्षक यह कहें कि इस प्रकार का तो और ढंग की असमालोचनाएं जुडिशियल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल इत्यादि भी ध्यान हटाती हैं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 93। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, वह आलोचना जो रचनाकार के जीवन और स्वभाव आदि का अध्ययन करके उसके सहारे उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान करती है। उदाहरण, इस पर शायद वह प्रभाववादी समीक्षक यह कहे कि इस प्रकार तो और ढंगी समालोचनाएं निर्णयात्मक जुडिशियल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल इत्यादि भी ध्यान हटाती हैं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 93। वैज्ञानिक समीक्षा, काव्य के विविध सौंदर्य विधायक तत्वों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन विश्लेषण करने वाली समीक्षा, कारण कार्य प्रणाली के निर्भांत सिद्धांत को आधार बनाकर चलने वाली व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण समीक्षा। उदाहरण, रस अलंकार आदि के नाना भेद निरूपण क्रोचे के अनुसार कला के निरूपण में कोई योग न देकर तर्क या शास्त्र पक्ष में सहायक होते हैं, उन सब का मूल्य केवल वैज्ञानिक समीक्षा में है, कला निरूपणी समीक्षा में नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 191। उदाहरण, रस अलंकार आदि के नाना भेद क्रोचे के अनुसार कला की सिद्धि में कोई योग न देकर तर्क या शास्त्र पक्ष में सहायक होते हैं, इन सबका मूल्य केवल वैज्ञानिक समीक्षा में है, कला निरूपणी समीक्षा में नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 173। व्याख्यात्मक काव्य वस्तु की व्याख्या करने वाली आलोचना, यह आलोचना शास्त्र निर्धारित रूढ़ नियमों की उपेक्षा करके कृति विशेष में पूर्णतः लीन होकर निरपेक्ष दृष्टि से उसके विवेचन में प्रवृत्त होती है। यह कवि या कृति के स्तर निर्धारण या मूल्यांकन में विश्वास नहीं करती, काव्य वस्तु के स्वरूप विलक्षण विश्लेषण तक ही अपने को सीमित रखती है। उदाहरण, व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों का एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है या मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु ही तक परिमित रहती है। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 526। उदाहरण, नोट, उपर्युक्त समीक्षाओं का आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास पृष्ठ संख्या 526 से 527 विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने निर्णयात्मक आलोचना का संबंध विद्वत्ता से और प्रभावात्मक समीक्षा का प्रशांत रुचि से जोड़ा है। समास पद्धति, कथन की वह पद्धति जिसमें अभिव्यक्ति को इतना सघन बना दिया जाता है कि पाठक को बात पूरी करने के लिए अपने ओर से अर्थ का आक्षेप करना पड़ता है। उदाहरण, दोहावली में कुछ दोहों की दुरूहता को कारण उनकी तुलसीदास की चमत्कार प्रियता नहीं समास पद्धति का अवलंबन है, जिसमें अर्थ का कुछ योजना, अर्थ का कुछ आक्षेप ऊपर से करना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 44। समासोक्ति। समासोक्ति का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कहना। जहाँ प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत अर्थ की भी प्रतीति हो, वहाँ समासोक्ति होती है। पद्मावत में वाच्यार्थ प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ अप्रस्तुत है। वर्णन प्रस्तुत का ही किया गया, किंतु आध्यात्म पक्ष जो अप्रस्तुत है का अर्थ भी व्यंजित होता है, अतः यहाँ समासोक्ति मानना उचित होगा। उदाहरण, इस प्रकार वाच्यार्थ के प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ के अप्रस्तुत होने से ऐसी जगह सर्वत्र समासोक्ति ही माननी चाहिए, जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 57। सर्ववाद। ब्रह्म संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है और ब्रह्म से ही सारा संसार प्रवर्तित होता है, यह मानना सर्ववाद है। उदाहरण, गीता के 10वें अध्याय में सर्ववाद का भावात्मक प्रणाली पर निरूपण है। कहां भगवान ने अपनी विभूतियों का जो वर्णन किया है वह अत्यंत रहस्यपूर्ण है, जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 160। उदाहरण, जहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं, उपास्य उपासक का भेद नहीं, वहां उपासना कैसे चल सकती है, अतः सर्ववाद को लेकर चली। सूरदास पृष्ठ संख्या 9। सवैया। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। वह ब्रजभाषा का सर्वाधिक प्रचलित छंद है। यह श्रृंगार और करुण रसों के लिए उपरयुक्त समझा जाता है। छंद शास्त्रज्ञों ने सवैया के लगभग 50 भेद किए, किंतु प्रमुख 6 भेद हैं। मदिरा, सात भगण प्लस गुरु, मत गयंत सात भगण प्लस दो गुरु, किरीट आठ भगण, दुर्मिल आठ सगण, सुंदरी आठ सगण प्लस एक गुरु एवं कुंडलिता आठ सगण प्लस दो गुरु। उदाहरण, समय यद्यपि वर्ण वृत्त हैं, पर लय के अनुसार लघु का गुरु बंधन उनमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। हिंदी साहित्य इतिहास पृष्ठ संख्या 640। सहृदय। रसज्ञ पुरुष रसादि के प्रति सहज भाव से समर्पित मर्मी काव्य पाठ काव्य शास्त्र की परंपरा से सहृदय की अवधारणा का श्रेय आनंद वर्धन को दिया जाता है। उन्होंने कहा है, येषां काव्यान शीलान अभ्यासात द्विषदी बभूते मनो मुकुरे वर्णनी तन्मयी भवन योग्यता ते हृदय संवाद भाज सहृदया। उदाहरण, अर्थात काव्य के अनुशीलन से जिनका मन मुकुर विशद हो गया और इस कारण जिनमें वर्ण वस्तु में तन्मय होने की योग्यता आ गई, ऐसे कवि के हृदय से संवाद के अधिकारी ही सहृदय हैं। उदाहरण, प्रत्येक सहृदय को अधिकार है कि वह उसके संबंध में अपनी अनुभूतियां प्रकट करे। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 93। उदाहरण, जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके प्रभाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रहती। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 22। सहोक्ति। जहां सह शब्द के अर्थ सामर्थ्य से अनेक व्यापारों में एक धर्म का चमत्कारिक वर्णन होता है, वहां सहोक्ति अलंकार होता है। साहित्य दर्पणकार के अनुसार सहोक्ति के मूल में अतिशयोक्ति का होना आवश्यक है, अतः अतिशयोक्ति कार्य कारण के पौर्वापर्व विपर्य के कारण होती है। उदाहरण, एक और उदाहरण लीजिए, जिसमें सहोक्ति द्वारा एक ही क्रिया धनुष भंग का कैसा विशद संग्राहक रूप दिखाया गया है। गहिकर तल मुनि पुलक सहित कौतु कही उठाई लियो, निपगन मुखनी समेत नमित करी सज सुख सबही दियो, आकारस्यो सिय मन समेत हरि हरस्यो जनक हियो, भज्यो भृगुपति गर्व सहित तिहु लोक विमोह कियो। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 101। सांकेतिक, सिंबॉलिक। तथ्य का बोध कराने वाले प्रतीक शब्द किसी न किसी कार्य का प्रतीक हैं, अतः वाच्यार्थ प्रधान तथ्य बोधक भाषा को सांकेतिक कह सकते हैं। उदाहरण, भाषा के दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, सांकेतिक तथा तथ्य बोधक तथा भाव प्रवर्तक। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 193। सांग रूपक। जहाँ उपमान का अंगों के साथ उपमेय के आरोप हो, जहाँ उपमान का अंगों के साथ उपमेय में आरोप हो, वहाँ सांग रूपक होता है। यदि यह कहा जाए कि आकाश सरोवर में सूर्य, हंस, तारक, मौक्तिकों को चुग रहा है, तो यहाँ उपमान सरोवर का उसके अंगों हंस और मौक्ति के साथ, उपमेय आकाश पर उसके अंगों सूर्य और तारक से का साथ आरोप है किया गया है, इसलिए यहाँ सांगरूपक हुआ। उदाहरण, सांगरूपक में कहीं कहीं तो केवल अप्रस्तुत दृश्य को किसी प्रकार बढ़ाकर पूरा करने का ही ध्यान कवियों को रहता है। वे यह नहीं देखना चाहते कि एक एक अंग या व्योरे में किस प्रकार का सादृश्य या साधर्म्य है। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 111। उदाहरण, अस कहीं कुटिल का भई उठी ढाड़ी, मानस रोष तरंगिनी बाढ़ी, पाप पहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई, दो वर कुल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। यह सांगरूपक कैकेयी के कर्म की भीषणता को खूब आंख से सामने ला रहा है। भाव या क्रिया की गहनता द्योतित करने के लिए गोस्वामी जी ने प्रायः नदी और समुद्र के रूपक का आश्रय लिया है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 102। सांप्रदायिक और सिद्धांती रहस्यवाद। अगोचर और अव्यक्त के प्रति रागात्मक संबंधों की स्थापना करके उसके एकात्मवाद को स्थापित करने का दावा करने वाला रहस्यवाद। उदाहरण, रविंद्र बाबू के दोस्त डब्ल्यू बीट्स एक ओर कट्टर देशभक्त और एक ओर आयरलैंड की अनन्य आराधना प्रवर्तित करने वाले थे, दूसरी ओर ब्लैक के सांप्रदायिक और सिद्धांती रहस्यवाद का पूरा समर्थन करने वाले थे। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 87। साधनात्मक रहस्यवाद। अनेक जटिल अभ्यासों के द्वारा मन को अव्यक्त सत्ता का साक्षात्कार कराना साधनात्मक रहस्यवाद है। उदाहरण, हमारे यहाँ का योग मार्ग साधनात्मक रहस्यवाद है। यह अनेक अप्राकृत और जटिल अभ्यासों द्वारा मन को अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार कराने तथा साधक को अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने की आशा देता है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 159। साधनावस्था। संसार में आनंद की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएं हैं, साधनावस्था एवं सिद्धावस्था। साधनावस्था में आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। संसार में व्याप्त पीड़ा, बाधा, अनीति, अनाचार आदि के दमन पर तत्पर ब्रह्म शक्ति के क्रियाकलाप आनंद का संचार करने वाले होते हैं। जिन काव्यकृतियों में आनंद का विधान करने के लिए अनीति, अनाचार, पीड़ा आदि के दमन में तत्पर ब्रह्म शक्ति के क्रियाकलापों का वर्णन होता है, वे आनंद की साधनावस्था प्रत्यक्ष पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य माने जाएंगे। रामायण, महाभारत, रघुवंश, रामचरितमानस, इलियड, ओडेसी आदि साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य हैं। आनंद मंगल की साधनावस्था को महत्व देने वाले कवि ही पूर्ण कवि हैं। उदाहरण, आनंद की साधनावस्था व प्रत्यक्ष पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के उदाहरण हैं रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 58। साधर्म्य, समान धर्म। उपमेय और उपमान में जो रूप गुण आदि का साम्य दिखाया जाता है वही धर्म है। उपमेय और उपमान के धर्मों में समानता ही साधर्म्य है। उपमान का विधाय उपमेय के उत्कर्ष के लिए होता है, इसलिए साधर्म से तात्पर्य धर्मों की ठीक ठीक समानता से नहीं। उपमालंकार में उपमेय और उपमान का साधर्म्य भेदाभेद तुल्य तो होता है, अभेद प्राधान्य नहीं होता। उदाहरण, सादृश्य या साधर्म्य दिखाना उपमा उत्प्रेक्षा आदि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा से बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के साथ पर उसके स्थान पर बाधा डालते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 49। साधारण धर्म। मनुष्य होने के नाते अन्य मनुष्यों के प्रति जो सामान्य कर्तव्य होता है वह साधारण धर्म होता है। उदाहरण, संसार के और देशों में जो मत प्रवर्तित हुए उनमें साधारण धर्म का ही पूर्ण समावेश हो सका। विशेष धर्मों की बहुत कम व्यवस्था है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 24। साधारणीकरण। विशेष के सामान्य हो जाने की प्रक्रिया काव्य में आलंबन रूप में चित्रित नायक नायिका विशेष व्यक्ति होते हैं, पाठक या श्रोता सामान्य हृदय होते हैं। काव्यगत आलंबन रूप में चित्रित नायक नायिका के प्रति जब सहृदय पाठक के मन में भी वही भाव उत्पन्न होते हैं जो कवि या आश्रय का उनके प्रति होता है, तो एक प्रकार से विशेष आलंबन रूप में चित्रित विशिष्ट नायक नायिका का सामान्यीकरण हो जाता है। इसी को शास्त्रीय शब्दावली में साधारणीकरण कहते हैं। उदाहरण, साधारणीकरण का अभिप्राय है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठक या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। द्वितीय, इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलंबन धर्मत्व का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा सा बहुत होता है। चिंतामणि भाग एक पृष्ठ संख्या 230। उदाहरण, अभेद भाव की भूमि तैयार करने का नाम ही साधारणीकरण है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 335। उदाहरण, आश्रय के साथ तादात्म्य और आलंबन के साथ साधारणीकरण सर्वत्र व्यंजना की प्रगल्भता और प्रचुरता पर अवलंबित नहीं होती। या तो आलंबन स्वभावतः ऐसा हो जिसका चित्रण इस रूप में हो, अथवा लोक में उसकी ख्याति ऐसी हो कि वह मनुष्य मात्र के किसी भाव को आकर्षित कर सके, तभी पूर्ण रसानुभूति के उपयुक्त साधारणीकरण होगा। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 90। साध्यवसान रूपक, जहाँ विषय उपमेय का निग्रहण करके विषयी उपमान का उस पर आरोप किया जाता है, वहाँ साध्यवसान रूपक होता है। उदाहरण, अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन कबीरदास जी ने कम ही किया। अधिकतर स्थानों पर उन्होंने विकारों, भूतों, इंद्रियों, चक्रों, नाड़ियों इत्यादि की शास्त्री में बांधा हुई केवल संख्याओं का उल्लेख साध्यवसान रूपकों में करके पहेली बुझाने का काम किया। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 70। उदाहरण, निर्गुण संप्रदाय वाले ही सूफियों की नकल पर अद्वैतवाद, मायावाद, प्रतिबिंबवाद इत्यादि की व्यंजना तरह तरह के रूपकों, साध्यवसान रूपकों, अन्योक्तियों इत्यादि द्वारा चित्ताकर्षणी मूर्तिमत्ता के साथ करते रहे। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 68। नोट, साध्यवसान रूपक के संबंध में आचार्य शुक्ल ने यह फुट नोट दिया है, इसे रूपकातिशयोक्ति से भिन्न समझना चाहिए। इसमें अध्यवसान अतिशय की व्यंजना के लिए साध्यवसान रूपक के अध्यवसान केवल मूर्त प्रत्यक्षीकरण के लिए होता है, अतिशय की व्यंजना के लिए नहीं होता। साध्यवसान रूपक एक भद्दी चीज है, इसे विलायती रहस्यवादी ईट्स तक स्वीकार करते हैं। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 68। वस्तुतः साध्यवसान रूपकों का कोई शास्त्र विहित भेद नहीं। अध्यवसान शब्द लक्षणा शक्ति से लेकर शुक्ल ने साध्यवसान रूपक की कल्पना की है और इसे एलिगिरी का स्थानापन्न बना दिया। सामंजस्यवाद, जीवन और जगत में प्रेम, हास, उत्साह आदि के साथ ही क्रोध, शोक, भय आदि की स्थिति को अनिवार्यता मानते हुए दोनों के सामंजस्य में काव्य के सौंदर्य का भावना करना सामंजस्यवाद है। उदाहरण, काव्य में हम वादों का बाहर से आना ठीक नहीं समझते, पर यदि वाद के बिना किसी पक्ष की पहचान न हो सके तो हमें कहना पड़ेगा कि हमारा पक्ष है अभिव्यक्तिवाद और सामंजस्यवाद। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 49। सामान्य, लोकोत्तर वैशिष्ट्य रहित। उदाहरण, राजस को हम सामान्य चित्र के भीतर ले सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 80। नोट, आचार्य शुक्ल ने सात्विक, राजस और तामस इन तीन प्रकृतियों की दृष्टि से रामचरितमानस के पात्रों को दो वर्गों में रखा, आदर्श और सामान्य। उनके अनुसार सीता, राम, हनुमान ये सात्विक आदर्श हैं और रावण तामस आदर्श, दशरथ, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, कैकेयी आदि सामान्य पात्र हैं। सामान्य आलंबन, वे आलंबन जो सभी संवेदनशील व्यक्तियों के हृदय के भीतर समान रूप से भाव विशेष जागृत करने में समर्थ होते हैं। उदाहरण, जब सब एक दूसरे को ऐसे ही करते दिखाई पड़ते हैं, तब सामान्य आलंबनों की परख हुई और उनके सहारे एक ही साथ बहुत से आदमियों में एक ही प्रकार की अनुभूति जगाने की कला का प्रादुर्भाव हुआ। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 54। सामान्य हृदय सत्ता। ऊपरी भेदभाव के बावजूद लोक में मानव हृदय की ऐसी अंतर्भूमि लक्षित की जा सकती है जहां मानव मात्र समान स्थिति में समान अनुभूति से भावित होते हैं। मानव हृदय की ऐसी अंतर्भूति को ही सामान्य हृदय सत्ता कह सकते हैं। उदाहरण, जहां सहृदय और सुकंठ कथावाचक सहस्रों श्रोताओं को किसी भाव में बहुत देर तक मग्न किए रहते हैं, जहां आल्हा गाने वाले सैकड़ों सुनने वाले को घंटों वीर दर्प पूर्ण किए रहते हैं, वहां भेद भूमि से परे एक सामान्य हृदय सत्ता की झलक दिखाई पड़ती है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 91-91। साम्य, एनालॉजी, उपमेय और उपमान के बीच रूप धर्म गुण आदि का साम्य, औपम्य। उदाहरण, जब उसमें प्रकृति की ठीक और सच्ची व्यंजना के बाहर जाकर प्रकृति के रूपों और व्यवहारों पर किए जाने वाले आरोपित भाव या तथ्य में कुछ सार ठहरेगा, तब प्राकृतिक रूप योजना के साथ उसके साम्य की रमणीयता का विचार होगा। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 65। साम्य मूलक अलंकार। ऐसे अलंकार जो उपमेय और उपमान की समता पर आधारित हो। आचार्यों ने अलंकारों का वर्गीकरण कई दृष्टियों से किया है। सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण रुय्यक का है। उन्होंने अलंकारों के 5 भेद दिए: सादृश्य गर्भ, विरोध गर्भ, श्रृंखलाबद्ध, न्यायमूलक, तर्क न्यायमूलक, काव्य न्यायमूलक अथवा वाक्य न्यायमूलक और लोक न्यायमूलक एवं 5वां गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। वस्तुतः अलंकारों का मूलाधार सादृश्य ही है। उपमा, अनन्वय, उपमेयता, प्रतीप, रूपक, उल्लेख, स्मरण, भ्रांतिमान, संदेह, अपनुहति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार सादृश्य मूलक या साम्य मूलक ही हैं। उदाहरण, अलंकारों में अधिकतर साम्य मूलक अलंकार ही अधिक प्रचलित होते हैं।